نیت کو بار بار کنٹرول ہے. شیطان جو شیطان ساجیداری والا کام اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, ایک آدمی نے کہا ساتھی بھی سنا ہے میں تو ہنسانے کا سے وہ تو مطلب یہ حقیقت ہے کہ معلوم نہیں, لیکن کیونکہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا پیچھے دو آدمی بیٹھے بیٹھے اس کی نماز کی تعریف کر رہے تھے, کیا ہوتا ہے رکوع ہے کیا سجدہ ہے کیا قیام ہے کیا ماشاء اللہ بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے. اس سے نہ رہا گیا وہ کہنے لگا بھائی صاحب یہ تو میری نماز آپ نے دیکھی میرا تو روزہ بھی ہے, یہ تو میری نماز دیکھی آپ نے میرا تو روزہ بھی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو پیچھے کھٹ کر کے آواز ہوئی دروازے کی, اس نے نماز اچھی کر دی, نماز اچھی کر دی, اچھی سے نماز پڑھی ہے, کیا سجدہ کیا. بعد میں جا کے دیکھا تو وہ تو کتا تھا یار. کون تھا دروازے میں کون تھا؟ ہم نے اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیتا. وہ تو دنیا والوں کے لیے کیا تو کیا ملے گا اس کے لیے؟ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے کا اصل نہ کریں, ہم کام جو کریں گے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. بدلہ کس سے لینا ہے؟ بدلہ اللہ سے لینا ہے, تو اللہ کو دکھانا ہے اپنا. اخلاص کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جس طرح گناہ ہو جانے پر گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو, کرتا نہیں کرتا, کسی کو بتانا چلے, کسی کو بتانا چلے, کسی کو بتانا چلے, مگر نیکی کر کے اس طرح نیکی کو چھپانے کی کوشش کرے. نیکی کرنے کے بعد نیکی کسی کو ظاہر نہ ہو اس کی کوشش کرے کہ میں کسی کو, بھائی میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ پاک دیکھتے ہیں, بس ختم ہوگی بات, بس دوسرے کو دکھانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے. اور وہی عمل جاندار ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا. فضائل عمل میں قصہ لکھا ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, تعلیم کے لوگوں بیٹھتے ہیں تو سنا ہوگا. ایک عابد تھا بنی اسرائیل کے اندر, اس کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پہ دور ایک جگہ پہ کسی نے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو درخت کی پوجا کرتے ہیں, جھاڑ کی پوجتے ہیں. تو اس کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے وہ کلہاڑی لی اور اس کو سوچا کہ جھاڑ کو ختم کر کاٹ دو, نہ رہے بانس نہ رہے بجے بانس ہوئی. تو وہ اس ارادے سے وہ جھاڑ کو کاٹنے کے یہاں سے نکلا, راستے میں شیطان ملا. پہلے زمانے میں شیطان نظر آ جاتے تھے, لوگ نظر آئے تو شیطان بزرگ کی شکل میں ملا. میں کہاں جا رہے ہو؟ بولے وہ فلاں جگہ میں ایک جھاڑ ہے, اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے, کاٹ ڈالنے میں. بول رہے تم کیا کرو, تم ایک فضول ایک چھوٹی سی نیکی کے واسطے یہ سب نیکی نیکی کو برباد کرتے ہو. سمجھانے لگا تم دیکھو تم جو ہے وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ چھوٹی سی عبادت کے واسطے اپنی ساری عبادتوں کو چھوڑ رہے ہو. نہیں یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, میں اس کو کاٹ کے رہوں گا. تو آپس میں کشتی ہوئی, جھگڑا ہوا, کشتی ہوئی, تو شیطان کو آپ نے تو بچا لیا, اور آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ دیکھو آپ اسے शैतान ने कहा आबिद को कि एक काम कर, मैं तेरे को नफे की बात बताता हूँ, मैं तेरे रोजाना तेरे सराने तकिए गिन के 3 नक्शे की आ जाएगी, उससे तो कितने सारे नए काम कर सकेगा, तो गरीबों को दे सकेगा, बेवाओं को दे सकेगा, यतीमों को दे सकेगा और भी कितने भलाई के काम कर सकेगा। और ये तो एक ही काम है, ये तो झाड़ काट डालेगा, दूसरे झाड़ लगा लेंगे, दूसरी जगह बात शुरू कर देंगे। उसकी समझ में बात आ गई, वो आबिद की समझ में बात आ गई, वो चला गया वापस। और 2 दिन तो आए उसको, 2 दिन तो उसको अच्छे से मिली, और तीसरे दिन फिर नहीं मिली। जब नहीं मिली तो फिर उसको गुस्सा आया, और फिर वो कुल्हाड़ी लेकर निकला, फिर वो शैतान मिला बुजुर्ग की शक्ल में, बोला आप तो उसको काट नहीं सकता झाड़ को, मैं क्यों नहीं काट सकता। फिर आप बादमबाजी हुई, झगड़ा हुआ आपस में, तो इस मरतबा शैतान ने इसको पछाड़ दिया। तो उस आदमी ने आबिद को ताजु हुआ कि मैंने आसानी से इसको पछाड़ दिया था, इस मरतबा तुझे तो पछाड़ दिया, वजह क्या हुई। तो वो शैतान कह रहा है कि पिछले मरतबा तू जा रहा था वो खाली अल्लाह के लिए जा रहा था, इस मरतबा अशरफे पर दखल है इसके अंदर, अशरफे जो इसलिए तू जा रहा है, अशरफे दीना नहीं मिले इसलिए तू जा रहा है, इसलिए तू कमज़ोर हो गया। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, मोहतरम दोस्तों हम जो है वो काम करें तो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करें, हमारी नीयतों को टटोलते रहें, नीयतों को टटोलते रहना ज़रूरी है। नीयत हमारी शुरू में अच्छी होगी, उसके बाद हो सकता है नीयत बिगड़ जाए, नीयतों को बार बार यादा करते रहें, नीयतों को ठीक करते रहें, नहीं काम कर रहा हूँ किसके लिए किया था, किसके लिए हो रहा है, किसके लिए कर रहा हूँ, समझे भाई, करेंगे इंशाल्लाह। और देखो जो मुखलिस होता है ना, मुखलिस जो होते हैं वो हिदायत की चिराग होते हैं, और मुखलिस जो है वो न किसी की तारीफ करने में बढ़ जाता है, न किसी की बुरा बुला के रहते रुक जाता है, वो तो अल्लाह के लिए कर रहा है, उसको तारीफ करे तो क्या, नहीं तारीफ करे तो क्या। इसलिए कहा कि देखो एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा है इसलिए पढ़ता है ताकि लोग देखें, इसलिए पढ़ रहा है ताकि लोग देखे। एक होता है कि आदमी इतने बड़ा तक तस्वीर के लोग देखते रहे, मैं इसके लिए तस्वीर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है। और एक होता है कि देखने की वजह छोड़ देवे, वो भी ठीक नहीं है। एक चीज पता है, कि भाई आदमी करता किसके लिए, अल्लाह के लिए करे। भाई कोई तारीफ करे तब भी ठीक है, ना तारीफ करे तब भी। तो बाज लोग हमारी काम पे तारीफ करेंगे, अरे वाह 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 वाह, और बाज लोग हमें तारीफ नहीं करेंगे, और हो सकता बुरा वाला भी कहें, ऐसा करा तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो आप आदमी का दिल छोटा हो जाता, अरे यार मेरी की और कोई मेरी तारीफ भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है, बाज बता चलता, अरे यार तुमको खबर है कौन सी परिस्थिति के अंदर हमने काम करा, ऐसा वैसा। तो अल्लाह के लिए वो करेगा ना, वो हमेशा करता रहेगा, लंबे टाइम तक करता है, और अल्लाह के लिए नहीं किया तो मुश्किल है। हमारे अमीर साहब हैं, वो एक मिसाल देते हैं इखलास की, कि इखलास के वास्ते अगर आदमी इखलास से आदमी काम करेगा तो आदमी करता रहेगा। एक बॉक्सिंग का रहना देखा ना, बॉक्सिंग जहाँ होती है ना, बॉक्सिंग फाइटिंग बॉक्सिंग कहते हैं, जैसे चौरस रिंग बनी होती है और 2 बॉक्सर लड़ते हैं आपस में, और उसका रेफरी होता है, वो सीटी बजाता है। आपने काम नहीं देखा होगा, तो कोई जगह वीडियो वगैरह देखा होगा, अंदाज होगा। तो एक जगह पे ऐसी फाइट होने वाली थी, मुकाबला होने वाला था, उसके अंदर एक था एकदम हट्टा कट्टा और एक एकदम दूधा पतला था, माय कंगा था। तो जो दूधा पतला था ना, उसने सोचा कि मैं तो इसको हरा नहीं सकता हूँ, मेरा जो मुकाबिल है उसको मैं हरा नहीं सकता, अगर हरा तो मैं खूब मारेगा तो मैं उड़ जाऊँगा, तो क्या करना चाहिए, मुकाबला तो करना है। सब शाय हो गया, लोग पब्लिक भी जमा हो गई, नुमाइश भी हो गई है बहुत सब, अब करना क्या चाहिए। उसने तहकीक की तो पता चला कि मेरा जो मुकाबिल है उसको एक आँख से दिखता है और एक आँख से दिखता नहीं है, एक आँख से दिखता है और एक आँख से दिखता है। अगर मैं किसी तरह उसको जो अच्छी आँख है ना उसको ख़राब कर दूँ, फिर मैं इसको पछाड़ सकता हूँ। तो उसने छोटी छोटी कंकरियाँ साथ में ली, इस वजह से कि उसकी जो अच्छी आँख है उसको मैं मारूंगा और उसको ख़राब करने की कोशिश करूंगा। अब जब वो राउंड शुरू होने लगा तो उसने राउंड शुरू होने वाला था कि उसने कंकरी मारी, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कंकरी जो है वो ख़राब आँख पर जाके लग गई और वो आँख ठीक हो गई। क्या हो गया भाई? बोला अब ऐसा हो गया तो वो सुखवाई देगा ना भाई, कि तुमने मेरा 50,000 रुपये क्या और जोर से मारेगा? बोले तो ये तो चटनी बना दो चटनी, ये तो तू गलती से तेरी गलती से गलती हो गई कि तेरी 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 गलती मेरे गलत आग पे लग गई, वरना तेरी नीयत तो खराब थी और तू तो मेरे को खराब करने आया था, मेरी आँख फोड़ने आया था, ये तो गलती हो गई और गलती से मेरी मेरी ऐसी खराब आग पे लग गई और मेरी आँख हो गई और गलत बनाएगा होगा नहीं होगा उनके ऐसे ही तो हदीस पाक में आता है सब खुलासा है तो बहुत सख्त हदीस है मैं इशारा कर रहा हूँ आपने छोटे सुना होगा कि कल कयामत के दिन अल्लाह पाक एक शहीद को बुलाएंगे एक आलिम को बुलाएंगे और एक खतीब को बुलाएंगे और पहले हिस्से के अंदर उनका हिसाब किताब होगा। अब तीनों ने बड़े बड़े कारनामे किए होंगे लेकिन उनके कारनामों से अच्छा उनके कारनामों से दीन को फ़ायदा भी पहुँचा होगा लेकिन उनकी नीयतें ठीक नहीं होगी। ये तो अल्लाह पाक फैसला करने वाले हैं इनकी नीयत ठीक है कि नहीं है। नीयतें ठीक ना होने की वजह से उनको अजाब होगा, उनको ऊंधे मुँह मुँह के बल खींच के जानवर देखा जाए। ये तो उनकी नीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से। लिहाजा दोस्तों हम अपनी नीयतों को ठीक करते रहे हैं, अपनी नीयतों को बनाते रहे हैं। नीयत अगर ठीक होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अजर अता फरमाएंगे और असर भी डालेंगे काम के, वरना काम के अंदर असर भी नहीं होगा और अजर भी नहीं मिलेगा। अच्छा बनी इसराइल के अंदर का वाक्य एक आता है, बनी इसराइल का वाक्य एक आता है, हमने सुना है ऐसा कोई नई नई बात नहीं सुना रहा आपको। बनी इसराइल का वाक्य है तीन 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 नौजवान थे, वो एक मतलब सफ़र में जा रहे थे, अब सफ़र में जा रहे थे तो बहुत बारिश होने की वजह से गार में उन्होंने पना ली, और जब पना ली तो एक पत्थर ऊपर से सरका और आके गार के मुंह पर आके रुक गए और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया, गार के अंदर से निकलने का रास्ता बंद हो गया। अब तीनों ने सोचा कि भैया इसको धक्का मार दे, धक्का मारने से ये पत्थर क्या करें, तो बोले अल्लाह से मांगो और अल्लाह से अमल पेश करो, कोई अमल ऐसा किया हो तो पेश करके अल्लाह से उसके वसीले से अल्लाह से मांगो, अल्लाह हो सकता अल्लाह को हो सकता है इसको इस मुसीबत से हमको नजात अता फरमाओ। तो पहले ने दुआ मांगी कि अल्लाह मैं बकरियाँ चलाया करता था और मेरा मामूल ये था कि मैं रात को जब आता था तो बकरी का दूध जब दूहता था उसके बाद मैं मेरे माँ बाप को पहले पिलाता था, उसके बच्चों मेरे बच्चों को फिर बाद में देता था। एक मतलब ऐसा हुआ कि आने में देर हो गई और माँ बाप जो उनकी आँख लग गई, नींद लग गई, तो मैं दूध का प्याला लेके बर्तन लेके खड़ा रहा, मैं माँ बाप को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और बच्चों को भूखे भूखे रहने दिया, लेकिन मेरे माँ बाप ने जब तक दिया नहीं वहाँ तक मैंने बच्चों को दिया नहीं। ये अमल अगर तुझे पसंद है तो ये मुसीबत मैं तेरे लिए किया था, अगर तुझे पसंद है तो हमें मुसीबत से नजात दिला। तो पत्थर थोड़ा सर का लेकिन इतना नहीं सर का कि तीनों निकल सके। दूसरे दुआ मांगी कि अल्लाह मैं मजदूरी में लोगों को काम कराया करता था, एक मतलब ऐसा हुआ कि एक आदमी जो मजदूरी कर मैंने दिन भर मजदूरी की थी वो मजदूरी लिए बगैर चला गया, तो मैंने उसकी जो मजदूरी थी उससे मैंने उसको इन्वेस्ट की, उसको मैंने रोकाण करा और उसे धंधा बढ़ाया 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 बढ़ते गए यहाँ तक कि बकरी का रेवड़ हो गए। उस ज़माने के बाद वो आया मेरे पास और कहने लगा कि मैं फला दिन तुम्हारे से तुम्हारी मजदूरी की थी और उसकी मेरी मजदूरी दे दो, मेरे मेरी ज़रूरत है मुझे। मैंने रेवड़ जीता है बकरी का, ये सब तेरा है, तो मजाक मत करो, मेरी जो मजदूरी वही मुझे दे दो। तो ये हकीकत में तेरा ही है, मैंने तेरे पैसे जो उसको ऐसा रोकण करा, मुर्गी लाया, मुर्गी सब मुर्गियाँ और आज ये इतना समय था, तो वो खुशी खुशी लेके चला गया कि अल्लाह अगर ये अमल तेरे लिए किया हो तो खुशी खुशी में जल्दी। तो पत्थर थोड़ा सरका और इतना नहीं सरका कि तीनों निकल सके। तीसरे दुआ की अल्लाह मेरी चचा बहन थी और वो मुझे वो अच्छी लगती थी, मैं उससे गलत फेयर करना चाहता था लेकिन वो कभी हाथ आती नहीं थी। एक मतलब ऐसा हुआ कि उसको पैसों की जरूरत पड़ी, वो जब जीस में आ गई तो उसने मुझसे सवाल किया तो मैंने देने में राज़ी हो गया, लेकिन मैंने मेरा मुतालबा भी बाकी रखा तो वो मजबूर हो गए, राज़ी हो गई। जब वो उसके काबू पा गया तो मैंने उसने कहा कि अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, तो मैं तेरे डर की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया और जो रकम दी थी वो भी नहीं ली मैंने। ये काम अगर आज तेरे लिए किया हो तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। तो पत्थर सरक गया और फिर वो निकल गई। दोस्तों इखलास की बरकत, इखलास ही की, तीनों 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 जो साथी थे उनके अमल के अंदर इखलास था, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इखलास की बरकत से उनको इस मुसीबत से, वरना छुटकारा नहीं था। अच्छा, तीनों अमल जो मिलेंगे हमको अगर गौर करेंगे तो इसके अंदर ना नमाज का दखल है, ना रोजे का दखल है, ना हज का दखल है। ये चौथे नंबर का तीनों अमल है। तीनों अमल जो है वो चौथे नंबर के अंदर आएंगे हमारे। तो चौथा नंबर भी ज़रूरी है, हम लोगों की खिदमत भी करें और साथ साथ जो है वो इखलास के साथ करें। और दोस्तों एक बात साथ में, हमारे मौलाना बैतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि हर काम के अंदर हम इस्तिखलास पैदा करें। क्या करें? इखलास भी हो और इस्तिखलास भी हो। इस्तिखलास का मतलब क्या है? यकसुई, यानी जो काम हम कर रहे हैं उसी काम को हम करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर भी मुँह मारा, थोड़ा इधर भी मुँह मारा, थोड़ा इधर भी देखते रहे, थोड़ा हर दिन अजीज ना बने। हर दिन अजीज, ये काम हमको किसी ने सौंपा था, सुपुर्द किया था, वो काम कर रहे थे, फिर दूसरे ने आके कहा भाई भाई साहब ये भी जरा कर लो, वो भी नेकी का काम था वो करने लगे, फिर दूसरे ने आके कुछ किया तो वो भी करने लगे, चौथे ने आके किया वो भी करने लगे, तो पहला जो काम था वो तो बाजू में रह गया। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी जो काम हमको दिया गया है उसी को करें, और वो पूरा करने के बाद फिर दूसरा करना हो तो करें, लेकिन जो काम हमको दिया है उसको हम पूरा करें ध्यान के साथ, एकसुए के साथ। और जो काम कर रहे हो इधर उधर ध्यान न रखें। मौलाना उमर सब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, एक आदमी जमात में गया और जमात में गया तो वहाँ पता चला कि भैंस बहुत सस्ती मिलती है, भैंस बहुत सस्ती मिल रही है यहाँ इलाके के अंदर। उसने दो भैंसें खरीद ली। अब वो भैंसें ला के मस्जिद के आगे बांधी है। अब रोज़ाना सुबह उठता है तो चारे की फिक्र कर रहा है, उनके दूध धोने की फिक्र कर रहा है, उसी के अंदर उसके चक्कर में लग गया है। तो अभी जो जमात में निकला तो जमात का काम करेंगे हम। ऐसे यहाँ पे हमको जो काम सुपुर्द किया है उसी काम को हम करेंगे। दूसरा और कोई खैर का काम नज़र भी आवे तो हम उसमें हम ध्यान नहीं लगाएंगे। समझे मेरी बात? अच्छा, इस मेहनत के अंदर खिदमत का, खिदमत में खिदमत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाया करते हैं कि हमारी शरीयत के अंदर सबसे ऊंचा मकाम, सबसे टॉप मोस्ट मकाम जो है वो शहादत का है। सबसे ऊंचा मकाम शहादत का है, उससे ऊपर और कोई मकाम नहीं है। लेकिन कोई आदमी अपनी मर्जी से शहीद नहीं हो सकता। हो सकता है कोई आदमी सोच में सोचो मैं शहीद हो जाऊँ, खुद मरेगा तो आत्महत्या हो जाएगी। लेकिन दूसरा मकाम जो है ना शहादत के बाद का जो मकाम है वो खिदमत वाला मकाम है, कि आदमी खादिम बन जाए। ये तो आदमी, हर आदमी बन सकता है, हर आदमी बन सकता है। तो खिदमत के लिए मौके तलाश करना है। मौका मिलेगा तो करूँगा, तो मौका मिलेगा नहीं, मौके तो हमको खुद को ढूंढने पड़ेंगे। हम खुद को ढूंढ के किसी को पानी पिला दिया वो भी खिदमत है, किसी का सामान उठा दिया रख दिया वो भी खिदमत है। हम मौके तलाश, मतलब मौके हम ढूंढे और मौके हमको खुद को बनाने पड़ेंगे। अच्छा, हमारे बहन सब यूँ भी फरमाते हैं कि दूसरे जितने अमल हैं ना उसके अंदर अगर इखलास नहीं होगा, इखलास में 19-20 होगा तो नहीं चलाया, नहीं चलाया जाएगा। लेकिन खिदमत के अंदर अगर 19-20 होगा ना तो अल्लाह उसको चला लेंगे। खिदमत के अंदर अगर 19-20 हुआ, थोड़ा आगे पीछे हुआ, तो वो काबिल एतमाद है, वो कबूल किया जाएगा। लिहाजा हम जो है वो, हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हम इंशाल्लाह इखलास से करेंगे। लेकिन अगर 19-20 हुआ तो वो भी चल जाएगा बनिस्बत दूसरे अमल के, दूसरे अमल के अंदर वो भी नहीं चला जाएगा। लिहाजा हम जो है वो खिदमत भी करेंगे और ये काम जो है वो इसकी नस्बत लग गई, दावत की मेहनत की नस्बत हमारे साथ लग गई। नस्बत की वजह से कीमत है इस काम का, थोड़ा भी बहुत है और बहुत भी थोड़ा है। क्या मतलब थोड़ा भी बहुत है का क्या मतलब? हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम थोड़ी सी खिदमत करेंगे उसमें अल्लाह क्या देने वाला है। अगर बता दिया जावे ना तो आदमी लाइन लगा हुए कि मुझे कुछ खिदमत दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ करने दे दो। यूँ फरमाया कि थोड़ा भी बहुत का मतलब ये है कि एक आदमी का जनाजा लाया गया हुजूर पाक अलैहि वसल्लम के ज़माने में। एक आदमी का जनाजा सामने हुजूर अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया और कहा गया कि अल्लाह के नबी इसके जनाजे की नमाज़ आप पढ़ाइए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के वास्ते, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपका दामन पकड़ लिया, चादर हो या कुर्ता हो जो होगा वो पकड़ लिया। तो क्या अल्लाह के नबी इसका जनाजे की नमाज़ ना पढ़ाए? क्यों ना पढ़ाएं? वजह क्या है? वजह यह कि ये लगे इसकी एक नेकी भी हमें मालूम नहीं है, इसकी एक नेकी भी हमें मालूम नहीं है कि इतना गुनहगार आदमी था, एक नेकी भी हमें मालूम नहीं कि कोई नेकी किया उसने। अल्लाह के नबी एकदम मुड़ गए सहाबा की तरफ, सहाबा की तरफ फेस किया और पूछा कि तुम में कोई है जो इसकी एक भी नेकी को जानता हो? एक सहाबी आगे बढ़े और यूँ कहा कि अल्लाह के नबी जानता हूँ। एक मरतबा हमारा काफिला एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो रात हो जाने की वजह से थक भी गए थे और अंधेरा भी हो गया था। हम लोग एक जगह ठहर गए, पड़ाव डाला जो इस आदमी के घर के करीब था। इस आदमी ने रात भर जाग कर हमारी और हमारे सामान की हिफाजत की, इस बात की गवाही में देता हूँ। इस आदमी ने रात भर जाग कर हमारी और हमारे सामान की हिफाजत की है, इस बात की मैं गवाही देता हूँ। तो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलासा है कि मैं अल्लाह के नबी इस बात की गवाही देता हूँ कि यह आदमी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। तो दोस्तों मामूली चीज़ नहीं है, एक रात जागा है सिर्फ, और कोई नेकी मालूम नहीं है इसके बारे में, और कोई नेकी मालूम नहीं है। एक रात जागा है उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और मुबारक जबान से जुड़ने की बशर सुन रहा है। तो मामूली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अमल भी अल्लाह ताला का कबूल हो गया तो हमारी बख्शिश के लिए, नजात के लिए काफ़ी होगा। और बहुत भी थोड़ा का मतलब क्या है? थोड़ा भी बहुत का मतलब तो ये होगा कि थोड़ा सा भी करेगा तो बहुत मिलेगा। और बहुत का बहुत भी थोड़ा का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लम ये फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह के रसूल शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। ऐसा 7 मरतबा फरमाया। कितनी मरतबा फरमाया? 7 मरतबा। बाद साहब यूँ के बारे में आता है, अब्दुल्ला अब्दुल हुज़ाफ़र के बारे में मशहूर है, और भी साहब के बारे साहबा के बारे में आता है। वो रोते थे इस बात पर, रोते थे। बादशाह ने पूछा कि क्यों रोते हो, डर गए तुम, हमारी बात कबूल करने को तैयार हो? तो नहीं, तू बेवकूफ़ नादान बादशाह, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, तेरी धमकी से नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी एक जान है और एक जान अभी ख़त्म हो जाएगी। काश मेरे बदन में जितने बाल हैं इतनी जानें होती और एक एक करके अल्लाह पाक जो है वो अल्लाह के रास्ते में लगा देता। मेरे बदन में जितनी बाल हैं इतनी जानें होती और एक एक करके अल्लाह के रास्ते में लगा देता, ये मेरी तमन्ना है। पता चल जाए कि क्या मिलने वाला है तो दोस्तों आदमी जो है वो लगा लगा के थकेगा और लगा लगा के उकताएगा नहीं, बल्कि वो सोचेगा कि और लगाओ और लगाओ और लगाओ, क्या मिलेगा वो तो दुनिया में बता नहीं जा सकता। देखो अलग से हम फिरौन 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 पढ़ते रहे, हज़ारों मरतबा फिरौन पढ़े, हज़ारों मरतबा फिरौन पढ़े, एक नेकी मिलने वाली नहीं है, मिलेगी एक नेकी। लेकिन एक आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा हो और दौरान तिलावत तिलावत के बीच में किसी आयत में फिरौन का लफ्ज़ भी आ गया और यहाँ फिरौन उस पर पढ़ा, तो आप उसे फा पे नेकी, रा पे नेकी, ऐन पर नेकी, हर हर्फ पे नेकी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। वजह क्या हो, यहाँ पर जो फिरौन जो पढ़ा ना दौरान तिलावत, ये इस पढ़ने पर, क्योंकि ये जो फिरौन का लफ्ज़ है वो उसकी नस्बत कुरान पाक के साथ होगी, तो नस्बत की वजह से कीमत होती है। हमारा वक्त तो इधर उधर कहीं भी गुजर जाने वाला था, अल्लाह का फजल, अल्लाह पाक ने यहाँ ला कर हमको बिठा दिया, हमको खिदमत में लगा दिया। हम थोड़ा भी करेंगे थोड़ा, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकल कर सर दर्द का हो जाना अल्लाह के रास्ते में हुआ है इसलिए मिलेगा, वरना सर दर्द क्या, बीमार हो जाते, मर जाते तो उन्हें कुछ ना मिलता। लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और सर दर्द हुआ, सर दर्द पर भी अल्लाह पाक बहुत कुछ देने वाले। थोड़ा सा जख्म हुआ था, अरे एक आदमी ने जेब में, इस जेब में सीधे जेब में तस्बीह रखी थी, सीधे जेब में तस्बीह, और उल्टे हाथ में उल्टे जेब में हाथ चला गया, अरे मेरी तस्बीह कहाँ चली गई, मैं तस्बीह कहाँ, इतना सा अड़चन हुई, क्योंकि इसको अड़चन बोलेंगे, मिल 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 मिल, इतनी थोड़ी सी, इस पर भी अल्लाह पाक देने वाले, इस पर भी मिलेगा। लेकिन क्यों मिलेगा? इसलिए कि अल्लाह के रास्ते की में हुआ है, अल्लाह के रास्ते की नस्बत है, तो अल्लाह के दीन की मेहनत की नस्बत हमारे साथ लगी हुई है, इस पर इसका फ़ायदा उठा हुआ है दोस्तों, करेंगे दोस्तों इंशाल्लाह। तो हम नियत करें इरादा करें तो इंशाल्लाह हम खिदमत भी करेंगे। और देखो ये मेहनत जो है ना, इस मेहनत के ज़रिए से अल्लाह पाक लोगों को हिदायत देते हैं। इसको लोगों को क्या मिलता है? हिदायत मिलता है। और हिदायत किसको मिलेगी, कब मिलेगी, हमें मालूम नहीं है। हमारी मेहनत और कोशिश से अगर अल्लाह पाक किसी एक आदमी को हिदायत दे देंगे, एक आदमी का हिदायत पर आना, ये बहुत बड़ी नेकी होगी। क्यों फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि ए अली, अगर तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल गई, एक आदमी को हिदायत मिली पूरी जिंदगी में, मैं तेरी एक आदमी ही को हिदायत अगर मिली तो दो रिवायत मिलती है, एक एक में ही अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरे लिए 100 सूर ऊँटों से बढ़कर है। कितने कितने ऊँट थे? हमको 4 ऊँट मिले तो हमको मुसीबत समझेंगे भाई, ये तो क्या मुसीबत आ गई, होगा नहीं होगा भाई? तो बोलो ना यार, हमको 4 ऊँट ला के कोई दे दे, तुमने समझ लो, तुमने आप पे आया शुभ मुसीबत आ रही। लेकिन अपने यूँ समझे, समझने के वास्ते आज के ज़माने के हिसाब से, हालांकि ये भी कंपेरिजन नहीं है, सरखामी नहीं है, लेकिन समझने का सकते यूँ कह कि तुमको 100 BMW से अफजल है। क्या कह रहे वो 100 एक के फाफे नहीं यार होते, तो ये समझने के वास्ते है, समझने के वास्ते, हालांकि ये भी कोई सरखामी नहीं है। अच्छा, एक रिवाज में तो यूँ आता है कि 100 सूर कूटों से बढ़कर है, और दूसरी रिवाज में यूँ आता है कि तेरे लिए हर उस चीज़ से अफजल है जिसमें सूरज तुलू होता हो, सूरज की रोशनी हर हर चीज़ पर गिरती है दुनिया के अंदर, उस सब चीज़ से बढ़कर है एक आदमी का हिदायत पर आना। और इलिया साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि लोग जब मरते हैं ना, लिखा है फ़ज़ाइल अमल में, लोग जब मरते हैं तो बाजों को खुशी होती है कि हमने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी, इतनी औलाद छोड़ी, इतना माल छोड़ा, कि मैं जब मर रहा हूँ दुनिया से जा रहा हूँ, वाला इलिया साहब फरमाते हैं, मैं जब दुनिया से जा रहा हूँ मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मुल्क को छोड़ के जा रहा हूँ, और इशारा उस वक्त था ना वो मेवात का, दिल्ली दुआवा वगैरह उस तरफ इलाके की तरफ इशारा था। आज अल्लाह के फजल से, आज अल्लाह के फजल से, दावत की मुबारक मेहनत की बरकत से, अल्लाह पाक ने दुनिया के सारे ही मुल्कों के अंदर, तकरीबन सारे ही मुल्कों के अंदर इस दावत को पहुँचा दिया, और जितनी खैर वजूद में आई और जितनी वजूद में आती रहेगी उन सब का अजर हमारा यह समझना है कि अमल नामे में इजाफा होता रहेगा, होगा नहीं होगा? तो अल्लाह पाक ने कब किसको हिदायत देंगे वो तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, बाद मरतबा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने फला आदमी को हिदायत देना तय किया है, एक आदमी को हिदायत देना तय किया है, और हम लोग मेहनत करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन वो उनको नतीजा नहीं आता। तो बाद मरतबा ऐसा होता है कि उसका श्रेय जो है ना, उसका जो फल, उसका नतीजा, उसका जो उसका उसका रिवॉर्ड, वो बहुत सौ को देना होता है अल्लाह पाक। थोड़ी मेहनत हमसे करवा दे, थोड़ी इनसे 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 करवाते हैं, और अखीर में एक आदमी मेहनत करता है और उसको हिदायत मिल जाती है। तो अखीर वाला क्या समझता है, हाँ हाँ देखा क्या तीर मारा है। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, थोड़ा थोड़ा योगदान होता है, और वो जाके अखीर वाला मेहनत सब मिल के मेहनत करते हैं, सबको अल्लाह पाक थोड़ा थोड़ा आ जाता है, बल्कि पूरा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी मार्केट हो, उसके अंदर आलू तोले जाते हैं मिसाल के तौर पर, अब वो 50 किलो का बाट रखा है, और जिससे दूसरे दरवाजे के जो पल्ला है उसमें आलू रखे जाते रखे जाते रखे जाते, वो झुकता नहीं है। अखीर में एक आलू रखा तो वो धीरे से झुकता है, अखीर वाला आलू समझे कि मैंने झुका दिया, अरे भाई तेरे तो अकेले तोले के तो चढ़े भी नहीं आ गए, ये तो सबने मिल के सबका मिल के मेहनत है, सबके सबने मिल के झुकाया है, ऐसे ही झुका के बाद मरतबा ऐसा होता है कि अल्लाह पाक को हिदायत देना होती है उसको, और हिदायत उसको मिलनी होती है, लेकिन सबका मिल के मेहनत हो, सबकी मिल के मेहनत मिल के उनको सबको अच्छा होता है अल्लाह पाक ताफा। और बाद मरतबा ऐसा होता है कि नतीजा कुछ भी नहीं आता, नतीजा आता ही नहीं, मेहनत भी नहीं आता है, सामने वाले मेहनत करता है, सामने वाले पर मेहनत की जाती है, वो कस्टमर्स नहीं होता दोस्तों। अगर उसको हिदायत नहीं भी मिली तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती। मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, यूँ फरमाते थे कि कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है, उनके मलफूजात में बात मिलती है, कैसी अजीब बात है कि लोगों ने खुद की कामयाबी और नाकामी को, लोगों ने खुद की कामयाबी और नाकामी को दूसरे लोगों के दावत के कबूल करने और न करने पर मौकूफ कर दिया है। क्या मतलब, हमें किसी को नमाज़ पढ़ने की दावत दी, हमें किसी को मस्जिद में आने की दावत दी, हमें किसी को दीनदार बनने की दावत दी, उसने हमारी बात को मान लिया, हम खुश हो जाते हैं कि हम कामयाब हो गए, हम खुश हो जाते हैं कि हमारी दावत को कबूल कर लिया उसने, हम खुश हो जाते हैं कि हम कामयाब हो गए। बार बार वो सुनी सुनी कर देता है, अरे जाओ जाओ देखे बहुत तुम्हारे जैसे बहुत आए, यहाँ आता हूँ फिर आता नहीं है, किसी मतलब ऐसा होता है। तो हम मायूस हो जाते हैं कि यार 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल से कस्टमर्स नहीं होता है, हम मायूस हो जाते हैं कि मेहनत करता हूँ लेकिन मानता नहीं है। तुम्हारे ये सब फरमाते थे कि कैसी अजीब बात है, लोगों ने खुद की कामयाबी और नाकामी को दूसरे लोगों के दावत की कबूल करने और ना करने पर मौकूफ़ कर दिया है। आगे फरमाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सामने वाला अगर दावत को कबूल करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, और उसने कबूल नहीं किया तो वो नाकाम हो जाएगा। हमारी कामयाबी नाकामी का उसकी दावत को कबूल करने और ना करने से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमको अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अगर हम पूरा कर रहे हैं तो अल्लाह पाक हमको नवाजेंगे। अल्लाह पाक ने हमको एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अगर हम पूरा करेंगे तो हम नवाजे जाएंगे। एक पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन देखा आपने? पोस्टमैन होंगे नहीं, हम इसमें इसमें पोस्टमैन कौन है भाई? यहाँ पोस्टमैन भी आए हैं बहुत सब। तो पोस्टमैन होता है ना, वो मनी ऑर्डर लेके आया है, मनी ऑर्डर लेके हमारे घर पे आया है मिसाल के तौर पर, और डोर बेल बजाया, हम आंखों को मलते मलते घर से बाहर आए, पर कौन आया, कौन इतने सुबह सुबह कौन आ गया? तो सोने का टाइम था, रात को नींद नहीं हुई थी, सफर से आया, ये कौन आया? बोले फला पोस्टमैन, पोस्टमैन आया। बोले मनी ऑर्डर लेके आया हूँ, मनी ऑर्डर लेके कवर लेके आया हूँ, आप कवर ले लिया साइन कर दो। कवर ले लिया साइन कर दिया तो हमको 2000 रुपये भेजे थे हमारे दोस्त ने बेंगलोर से, तो वो मिल गया हमको। भाई ठीक है, मिलेंगे ना मिलेंगे, और अगर हमने उसका उल्टा किया, भाई कौन आया है तो सुबह सुबह क्या बात है? तो पोस्टमैन, अरे ये कोई घर मिलता ही नहीं मिलता तुम लोग दूसरा, अभी 4 दिन पहले तो आए थे, जब भागो भागो ऐसे भगा दिया उसको, धुतकार के भगा दिया, तो वो तो चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, 4 दिन बाद फिर आया, 3 दिन बाद फिर आया, लेकिन हर वक्त भगा दिया हमने, तो उसको उसको पगार बराबर मिलेगा भाई? मिलेगा नहीं मिलेगा भाई? बोलो ना यार, मिलेगा नहीं मिलेगा? उसको उसको पगार में कोई कमी नहीं, उसके अम्यूनिटीज में कोई कमी नहीं, उसको फैसिलिटी भी मिलने वाली, सब कुछ मिलने वाला है। वो तो लिखेगा स्वीकार ही नहीं, वो लिख देगा भाई मैं नहीं स्वीकारा, मैं लिया नहीं, कबूल नहीं किया, मैं तो गया था, यहाँ भी गया था, यहाँ भी गया था, इस दिन भी गया, इस दिन भी गया था, लिया नहीं, मैं क्या कहूँ? ऐसे ही दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको एक काम अता फरमाया है, उस काम को करने पे नतीजे के मुकल्लफ हमको नहीं बनाया, नतीजे के मुकल्लफ हमको, अगर नतीजे के मुकल्लफ हमको बनाया होता ना तो मामला खटाई में पड़ जाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि 950 साल तक मेहनत की है, 50 साल तक, मामूली 950 साल भी बहुत लंबा अरसा होता है, 950 साल तक मेहनत की, और 950 साल मेहनत करने के बाद नतीजा 80-82 आदमी ईमान ला, एक साल का एक भी नहीं बैठ रहा है, और कैसी मेहनत की होगी? उम्मत का गांव, उम्मत का दर, इंसान की मोहब्बत दिल के अंदर, नबी ऐसे थोड़ी होते हैं, नबी तो आला अखलाक वाले, हिल वाले और अच्छे सिफात वाले, वो कितने कूड़े होंगे। और उनके बारे में आता है नूह अलैहि सलाम के बारे में कि रोते बहुत थे, उनका नाम नूह नहीं था, उनका नाम नूह नहीं था, तो रोते बहुत थे, नोआ बहुत करते थे, बहुत रोते थे, बहुत रोते, अल्लाह की बारगाह में बहुत रोते थे, उनका नाम तो अब्दुल गफ्फार था, लेकिन रोते इतने ज़्यादा थे कि रोने की वजह से उनके नाक की यहाँ पर नालियाँ बन गई, यहाँ पर नालियाँ बन गई, इतना रोते थे, और रोते सोचो उम्मत के लिए कितना कूड़े होंगे। और इनको आलम सानी कहा गया, और पांच जो टॉप नबी जो है, पांच उलुल अज़्म नबी है, उनमें इनका शुमार है, सोचो अंदाज़ा लगाओ। तो 950 साल तक मेहनत की, और 950 साल मेहनत करने के बाद उनका नतीजा है, तो नाकाम नबी नहीं बल्कि कामयाब नबी बचे, ऊँचे टॉप 5 के अंदर उनका नाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नबी टॉप 5 के अंदर इनका नाम। तो अंदाज़ा लगाओ मैं, ये नाकामी इनके हाथ में, नतीजे इनके हाथ में नहीं है, नतीजे ऐसे हमारे हाथ में भी नहीं है। हमको काम दिया है, उस काम को करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है नतीजा जो भी होगा, नतीजा अल्लाह पाक के हाथ में है, नतीजा जो भी होगा अल्लाह पाक हमको नवाजेंगे। सामने वाला हाँ बोले तब भी फ़ायदा, ना बोले तब भी। एक बादशाह था, वो बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो मुझे ऐसी बात सुना है जो मैंने कभी नहीं सुनी, जो मैंने ऐसी बात सुना तो उसको 10 लाख रुपये इनाम, बड़ा इनाम उस ज़माने में। तो लोग दूर दूर से आते थे, लाइन लगती थी और नंबर लगता था, तो बादशाह को अनोखिया की उसी से बात सुनाते थे, इस उम्मीद पर कि इनाम मिल जाए। बादशाह पूरी बात सुनता था, सुनी हुई है। लोग मायूस होकर चले जाते थे, लोगों ने जाना छोड़ दिया, मतलब एक अजीब आदमी है यार, पूरी बात सुनता है, सुनने के बाद क्या बोलता है, सुनी हुई है, लोगों का कोई फायदा नहीं जाने का, उसकी छटिया गई, उसके दिमाग ख़राब हो गया। उस ज़माने के बाद एक आदमी उछलता कूदता बादशाह के महल की तरफ जाने लगा। लोगों ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो इतना खुशी? फिर बादशाह सलामत को ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ जो उसने कभी नहीं सुनी। बोले कोई फायदे की बात नहीं, बादशाह सुनने के बाद क्या बोलेगा, सुनी हुई। नहीं, मुझे मेरा नसीब आजमा ले दो। ठीक है कर लो, हम तो अपना नसीब आजमा चुके, तुम भी कर लो। जब बादशाह तक किसी से किसी जरिए से पहुँचाया गया, बादशाह मुझे कैसे आना हुआ भाई साहब? तो मैंने बादशाह साहब आपको ऐसी बात सुनाने आया हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी। बोले अच्छा सुनाओ। बोले किसी ज़माने में आपके परदादा और मेरे परदादा बहुत गहरे दोस्त थे, और आपके परदादा बहुत गरीब थे, मेरे परदादा बहुत मालदार थे। आपके परदादा को पैसे की जरूरत पड़ी, 10 लाख रुपये कर्ज लिया था और लौटाए नहीं थे। सुना आपने? बोले अरे सुना बोलता है तो बोलता है कि कर्जा दे दो वापस, और नहीं सुना बोलते तो इनाम दे दो। तो हाँ बोले तो बोलते, ना बोले तो समझे। तो ऐसा हमारा हाल है, सामने वाला अगर हाँ कहते तो भी फायदा हमारा, ना कहते तो भी। हाँ ये तो एक मैंने वाक्य सुनाया हंसा जगाने के वास्ते आप लोगों को। लेकिन अगर शरीर की रोशनी में अगर हम नजर डालेंगे ना, तो यही बात मिलेगी। एक आदमी के बारे में आता है कि दुश्मन में से एक आदमी ने तीर मारा, नेजा मारा, उनको लगा और ये शहीद हो गया, खून का फवारा निकला। शहीद होते होते कहने लगे कुछ तो वल्लाह, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। और उनकी डेड बॉडी जो थी ना, लाश जो थी, वो आसमान की तरफ उड़ी चली गई। अब मारने वाला हैरत में, मैंने मारा, सामने वाला मारा। अगर ये सीन 5-25 आदमी देखेंगे तो क्या क्या फैसला करेंगे कि ये कामयाब हो गया नाकाम हो गया? ऐसे बोलेंगे ना, मारने वाला कामयाब हो गया, मरने वाला नाकाम हो गया। मरने वाला काबे के रब की कसम खा के कह रहा है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा है कि मैं कामयाब हो गया। तो लोगों से उससे पूछा कि कौन सी कामयाबी, मुझे समझाओ तो सही। मैंने मारा, सामने वाला मरा, और वो कहता है मैं कामयाब हो गया, तो कौन सी कामयाबी? लोगों ने बोला भाई साहब वो जन्नत की कामयाबी। कौन सी कामयाबी? अच्छा, तो उसमें वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया। बोले मरो तो कामयाब, मारो तो कामयाब, मरो तो कामयाब, मारो तो। ये भी अच्छा यार। मेरे वाली साहब अक्सर कहते हैं कि देखो मुसलमान जो है ना, मुसलमान वो नाकाम होता ही नहीं है। वो कहता है बाघ आएगा तो मैं जीता। टॉस करते हैं ना, टॉस टॉस देखा फिर टॉस, बाघ आएगा तो मैं जीता और कांटा आएगा तो तू हारा। मतलब जीतने का कौन है? बोलो ना यार, बाघ आएगा तो मैं जीता और कांटा आए तो तू हारा, मतलब जीतने का तो मैं जो हूँ। दोनों दोनों जीत भी मेरी, पद भी मेरी। वो गजवे मोहता का वाक्य है, बहुत लंबा वाक्य है, मैं मुख्तसर में कह रहा हूँ, बहुत मुख्तसर में कह रहा हूँ। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लम ने रूम के बादशाह को खत लिखा, दावत दी, इस्लाम की दावत दी। तो उनका जो गवर्नर जो था ना, उसने रोक लिया कासिद को और उसको शहीद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लम को नागवारी गुजरी, 3,000 का लश्कर तैयार किया, कहा कि इसमें जिम्मेदार जो होंगे ना, वो जैद इब्न हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु रहेंगे। अगर ये शहीद कर दिए जावे तो जाफर इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अमीर बनाए जाएँ। ये भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रदियल्लाहु तआला अमीर बनाए जाएँ। ये भी शहीद हो जावे तो मुसलमान मशवरा करके आपस में किसी को अमीर तय कर लें। अब जो लश्कर रवाना हुआ तो मदीना मुनव्वरा के बाहर तक हुजूर पाक सल्लम छोड़ने के लिए गए, सहाबा भी छोड़ने के लिए गए, लोग छोड़ने के वास्ते जा रहे हैं। तो रास्ते में दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह पाक तुमको खैरियत के साथ, सलामती के साथ, आफियत के साथ लावे। और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला शायर थे, अरबी के अंदर अशआर पढ़ने लगे। और इसके तर्जुमे का मफहूम यूँ होता है, करीब करीब मफहूम भी ऐसा होता है, कहने लगे कि मैं तो चाहता हूँ कि दुश्मन की तरफ तीर या तलवार या नेजा ऐसा हो जो मेरे हाथों और कलेजे को चीरता हुआ निकल जाए, और मैं जब लोग मेरी कब्र पर गुजरे तो कहें कि वाकई में रशी तो कामयाब था। इस किस्म के कुछ अल्फाज नहीं थे। अब जब लश्कर रवाना हो गया तो कुछ दूर आगे गए तो सामने वाले को पता चला तो उसने बोला 2 लाख की फौज तैयार की। कितने लाख की? और ये कितने हैं? 3,000। अब कहाँ 2 लाख और 3,000? और फिर एक दोस्त को खबर की तो उसने बोला चिंता मत करो, मैं 1 लाख भेज रहा हूँ। इसने बोला 1 लाख मैं भेज रहा हूँ, 2 लाख तो ऑलरेडी हैं और दूसरे 2 लाख और आ रहे हैं, और ये 3,000। अब मैच नहीं खाता, साहबा घबराते नहीं थे। साहबा जी जाते थे चिल्ले चार महीने के लिए नहीं जाते थे, वो तो शहीद होने के लिए जाते थे। तो घबरा नहीं रहे लेकिन मैच नहीं खा रहे। तो सोचा कि अल्लाह के नबी को खबर करनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। अगर फिर भी अल्लाह के नबी कहेंगे नहीं आगे बढ़ो, हम बढ़ने को तैयार हैं। तो चंद कबाई साहबा जो है वो मशवरा करने के लिए जमा हुए। अगर अब्दुल्लाह ने रवा रज को पता चला कि ये तो मशवरा कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी को खबर करनी चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी पहुँचे जगह पे, मशवरे की जगह पर कहने लगे कि तुम लोग भी अजीब कौम हो। क्या कहने लगे? इस किस्म के अल्फाज मिलते हैं, तुम लोग भी अजीब कौम हो। जिस जिस मकसद को पाने के वास्ते तुमने अपने घरों को छोड़ा है और तुम्हारा मकसद तो शहीद हो जाना है,
جب وہ سامنے نظر آنے لگی تو تم مشورہ کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو خبر کریں کہ آگے بڑھیں. پھر آگے لکھا کہ للکار کے فرمایا کہ آگے بڑھو, دو کامیابیوں میں سے کامیابی یقینی ہے یا شہادت یا غلبہ. آگے بڑھو, دو کامیابیوں میں سے کامیابی یقینی ہے یا شہادت یا غلبہ, یا شہید ہو جائیں گے یا غالب ہو جائیں گے, پھر پھر کے بھاگنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو دوستو اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے, سامنے والا مانے تب بھی کامیاب, نہ مانے تب بھی مایوسی اس کام میں ہے ہی نہیں, اس لیے کہ کام تو اللہ پاک کرنے والے, ہم کو نہیں کرنا ہے. ہمارے ہاتھ میں اگر کام ہوتا, ہمارے ہاتھ میں اگر کام ہوتا تو ہم جو ہے وہ نتیجہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو مایوسی آ سکتی تھی. نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کامیابی عطا فرمانے والے ہیں. ہم سامنے والا مانے گا تب بھی ہم کامیاب, نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے. میں تو نیت کرتے ہیں ان شاء اللہ کریں گے. اور دیکھو ہماری کسی کے کام آ جانے سے اور کسی کا دل بڑھ جانے کی وجہ سے اور کسی کا دل جیتنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کام کے قریب آ جا رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے دین کی بات سن لے گا اور اس کی زندگی صحیح راستے پر آ جائے. تو ہمارا خدمت کرنا بھی اس کے اندر ٹیکا ملے گا آپ کو. ایسا نہیں کہ جس نے بیان کیا اور جس نے تقریر کی اسی کو سب کچھ ملنے والا ہے. ہم نے کسی کو پانی پلا دیا, کسی کو اکرام کر دیا, کسی کو اچھے سے بول دیا, ہنس ہنس کے بات کر لی, اس کو جگہ پہ بٹھا دیا, اچھی جگہ دے دی, ایسا کر لیا, ایسا بھی کیا نا, تب بھی ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا. تو ہم جو ہے وہ جس طرح سے کام آ سکتے اس طرح کام آ رہے ہیں ساتھیوں کے. سمجھے بازو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو تقریر کرے گا اسی کو سب کچھ ملے گا. تقریر تو ہمارے کام کے اندر مگر عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیان جو ہے بیان وہ تو گاڑی کے اندر ہارن ہوتا ہے, اس کا ہی درجہ رہتا ہے. گاڑی میں ہارن کتنا ہوتا ہے؟ ہارن نہ ہو تب بھی گاڑی چلنے والی ہے. ہارن اگر نہیں ہے ہارن جو ہے بچتا ہے کیا, ہارن بچتا ہے, ہارن اگر نہیں ہوگی تب بھی گاڑی چلنے والی ہے, اس کے بعد رکنے والی نہیں گاڑی. تو اس کی ضرورت تو ہے لیکن اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. تو ہمارا باقی جو ہے ہمارا عمل سے انسان دعوت پہنچے گی, بیان کے ذریعے دعوت جتنی پہنچے گی اس سے زیادہ عمل زیادہ مؤثر ہوگا. لہٰذا ہم جو ہے وہ خدمت کریں, کسی کے کام آ جائیں, کسی کو اکرام کریں. اکرام کرنا بہت بڑی بات ہے. دیکھو فضائل عمل کے اندر اگر آپ دیکھو گے کہ اکرام کے اوپر جتنا سب لکھا گیا ہے, اکرام کے اوپر لکھا ہے, فضائل ذکر کے اوپر لکھا گیا ہے, بڑے بڑے باب ہیں. ہم جو ہے وہ اس کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھیں کہ یہ تو خدمت ہے, خدمت کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے دوستو. ہم کو اگر بیان کرنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, ہم خدمت تو کریں, خدمت کر کے دل جیتے گئے لوگوں کا. ٹھیک ہے, کریں ان شاء اللہ. اچھا بھائی آج شفیع حلقے سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ کچھ ساتھی اٹھ کے گئے ہیں وہ خدمت, لیکن جس کو معلوم ہو بتاؤ. رات کو آ گئے تھے ماشاء اللہ, میں نے دیکھا رات کو اچھا تھا بھائی, آپ نے دیکھا رات ہاں جیسے اٹھ کے گئے میں دیکھا, میں اس کی روکا نہیں, میں کیا اسے خدمت کر رہا ہوں. آپ کے سائڈ کتنے آدمی آ گئے ماشاء اللہ. پر مکھی ہلکے سے کچا انڈا ہو جائے گا اس کے بعد, باقی آ رہے کوئی لکھتا ہے؟ کوئی لکھے گا 60-26 اور نور ہلکے سے, میں نور ہلکے والے کیا بات ہے ہاں؟ نہیں انا جتنے بول رہا میں کہاں ہاتھ دن سے رہوں گا ہاں؟ کتنے 20 کیوں ایسا؟ میں 26 میں کم سمجھتا تھا تو اور کم ہو گئے, میں 26 کم سمجھتا تھا تو وہ تو اور کم ہو گئے. اور آ رہے ساتھی؟ نہیں آ رہے, نہیں آ رہے, ہاں ذرا بلا لو فون کر لیں. 25 لکھو نور ہلکے میں. اور سیف ہلکے سے, میں سیف ہلکے والے کوئی بولو گا یار؟ ہاں ہاتھ اوپر کی اچھی بات ہے کہ کسی کو پتا ہو کتنے آئے تو بتا دو, ایک کچی حاضری ہو جاوے تاکہ انداز آ جاوے کہ بھائی کتنے لوگ آئے. अच्छा, एक इधर से एक हाथ ऊपर हुआ, कोई टेबल के वाले इस तरफ से कोई, तो और साथी की तरफ बुला लो भाई। ठीक है, कितना है सर? 30। और अच्छा, इब्राहिम अलका भाई, इब्राहिम अलका 30। किस लिखो भाई? अल फजल अलका 15 आगे, दूसरे और आ रहे हैं। और शामिल का
5 आए,
5 आ गए, बाकी जा रहे हैं।
अभी नमाज बाद निकलेंगे सब।
हाँ, मालूम कर लो, मुझे आगे जो बता दो। विरोचन नगर आगे से कितना है भाई?
20 मोटे आ रहे
हैं। समझती मोटो गाड़ो तुमने आप दे बैठने के अंदर जो तरतीब बनाई है, जो विरोचन नगर हल्का और पिछड़ा हल्के हैं, दोनों को बड़े बड़े गाले मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े 5 गांव हैं और करीब का इलाका है, तो बात बड़ा उम्मीद होती है इंशाल्लाह ज़्यादा लोग आएंगे। मौलाना कह रहे हैं कि हल्के के जो बैठने के जो बोर्ड है ना, वो अभी लगे नहीं है, मैं वो कर लेते हैं। लेकिन कम से कम जुमेरात के दिन बताया गया था कि तो कौन सा हल्का कहाँ बैठेगा, आपको मालूम है भाई? व्हाट्सएप भी है और भेजा भी था। हाँ, तो वो हिसाब से बैठ जाओ आपने, बहुत आसानी से करा। लेकिन फिर भी हम बोर्ड भी लगाने की कोशिश करते हैं, बोर्ड लगाने की फिक्र कर लेते हैं। अच्छा, देखो भाई, अभी ज़रूरत से फारिग होने के लिए वक्त दिया जाता है अपने भाई। नाश्ता तैयार है भाई? हमें इशराक की नमाज़ पढ़ लेगा हूँ, अल्लाह जाकर नाश्ता तैयार हो गया होगा।